नमस्कार भारत, तारीख 21 सितंबर दिन बृहस्पतिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। म्यांमार में रोहिंग्या संकट के समाधान के लिए सख्त कदम उठा सकता है संयुक्त राष्ट्र।
Sur la Birmanie, l'odieuse purification ethnique est en cours.
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि उसने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई की है और आगे भी करेगा। बंधनों को तोड़कर नेशनल हैंडबॉल टीम में कैसे आई बिहार की खुशबू?
मैं तो पहले बहुत रोती थी सर, कोई दिन ऐसा नहीं होता था जो मैं रोई नहीं गेम को लेकर। अपनी दोस्तों को ग्राउंड जाते देखती थी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, जैसे लगता था बस मैं भाग जाऊं यहां से।
कार्यक्रम में खबरें और भी होंगी, साथ ही होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, आदर्श राठौर से। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों से जिस तरह का बर्ताव हो रहा है वो जनसंहार जैसा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से म्यांमार के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की है, मगर म्यांमार ने एक बार फिर दोहराया है कि उसके यहां बने हालात के लिए रोहिंग्या खुद जिम्मेदार हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक 4 लाख से ज्यादा रोहिंग्या म्यांमार से पलायन करके बांग्लादेश में शरण ले चुके हैं। मैक्सिको में मंगलवार को आए भूकंप से मलबे के नीचे दबे लोगों को ढूंढने का अभियान जारी है। अभी तक इस भूकंप में 220 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। राजधानी मैक्सिको सिटी में एक स्कूल के ढह जाने से 21 बच्चों की मौत हो गई। मैक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक पेना नियटो ने कहा कि लोगों की जान बचाने के लिए एक एक मिनट महत्वपूर्ण है। अभी तक राजधानी में मलबे के नीचे से 52 लोगों को बचाया जा चुका है। इस महीने आए इस दूसरे शक्तिशाली भूकंप ने पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। मैक्सिको के विदेश मंत्री लुई विडेगडे ने बचाव कार्य के विशेषज्ञों की जरूरत बताई। पूरी दुनिया मैक्सिको की मदद कर रही है, सभी देशों से हमें साथ मिल रहा है। अभी हमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की जरूरत है। अगर अनुभवी लोग खास उपकरणों से सहायता करेंगे तो हमें फायदा होगा। पुनर्निर्माण बाद की बात है, अभी राहत और बचाव कार्य सबसे जरूरी हैं। ये थे मैक्सिको के विदेश मंत्री लुई विडेगडे के शब्द। पुएर्टो रिको में सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि हरिकेन मारिया की वजह से पूरे द्वीप में बिजली की सप्लाई रुक गई है। इससे इस द्वीप में रहने वाले करीब 35 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। आपदा प्रबंधन समिति के मुताबिक हरिकेन ने अपने रास्ते में आई हर चीज तबाह कर दी है। पुएर्टो रिको में 2 हफ्तों के अंदर आया ये सबसे बड़ा दूसरा हरिकेन है। इससे पहले आए चक्रवाती तूफान इरमा ने भी यहां पर तबाही मचाई थी। अभी हरिकेन मारिया के चलते द्वीप में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। फिलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि वो फिलिस्तीनी इलाकों से इसराइल के कब्जे को एक समय सीमा के अंदर हटाए। इससे पहले अब्बास ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा था कि उनके सलाहकारों को लगता है कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति समझौते की अच्छी गुंजाइश है। संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में अब्बास ने इसराइल द्वारा आबादी बसाए जाने की आलोचना करते हुए कहा कि द्विपक्षीय समझौते की संभावनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर संयुक्त राष्ट्र अपने प्रस्तावों को लागू नहीं करवाना चाहता तो कोई और उन्हें कैसे लागू करवाएगा? इसराइल तो ऐसा करना नहीं चाहता। क्या वो कानून से ऊपर है? फिर दोहरे मापदंड क्यों अपनाए जाते हैं? ये आपकी भी जिम्मेदारी है। ये थे फिलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने उत्तर कोरिया को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख की आलोचना की है। जर्मन रेडियो के दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में जिस तरह की धमकी दी है वो उसके खिलाफ हैं। ट्रंप ने कहा था कि अमरीका को हमले से बचाने के लिए उनके पास उत्तर कोरिया को पूरी तरह तबाह करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। एंगेला ने कहा कि जर्मनी को लगता है कि इस तरह से समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। पत्रकारों का कहना है कि एंगेला मर्केल जिस तरह से खुद को ट्रंप से अलग दिखा रही हैं, उससे रविवार को होने वाले चुनावों से पहले मतदाताओं के बीच अच्छा संदेश जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान की निंदा की कड़ी आलोचना की। रूहानी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में ट्रंप का भाषण नासमझी और नफरत भरा था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। वो सभी श्रोता जो कि इस समय इस कार्यक्रम को फेसबुक पर सुन रहे हैं और हमें अभिवादन भेज रहे हैं, हमारी ओर से उनका अभिनंदन अभिवादन। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। इससे पहले कि हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें, इस समय एक खबर अभी अभी आ रही है, यानी कि ब्रेकिंग न्यूज़ है, और वो खबर ये है कि पुलिस ने पिछले हफ्ते लंदन में जो ट्यूब में पार्सन्स ग्रीन में धमाके हुए थे उसके सिलसिले में 17 साल के एक लड़के को गिरफ्तार किया है। इस तरह से इस मामले में अब तक जो गिरफ्तार हैं उनकी संख्या बढ़कर 6 हो गई है। ये सभी लोग अभी भी पुलिस हिरासत में हैं और इन्हें लंदन साउथ लंदन पुलिस स्टेशन में ये हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। रोहिंग्या संकट को हल करने के लिए विश्व समुदाय लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, मगर म्यांमार पर इसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। म्यांमार अब भी अपने पुराने रुख पर अड़ा हुआ है और इस हालत के लिए, यानी कि इन हालातों के लिए रोहिंग्या मुसलमानों को जिम्मेदार बता रहा है, मगर अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस मसले के समाधान के लिए कुछ सख्त कदम उठा सकती है। क्या हो सकते हैं कदम और किस तरह से प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है? बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए आदर्श राठौर से।
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने बताया है कि अब तक 4 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश में शरण ले चुके हैं। विश्व समुदाय रोहिंग्या संकट को लेकर चिंतित है, मगर म्यांमार सरकार का कहना है कि चरमपंथियों का समर्थन करने वाले रोहिंग्या ही बांग्लादेश भागे हैं। म्यांमार के समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर विन माइटाई कहते हैं कि उनकी सेना सिर्फ चरमपंथियों से निपट रही है। चरमपंथियों की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए हमें उन्हें गिरफ्तार करके पूछताछ करनी पड़ी। सामान्य तौर पर यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। हो सकता है कि इससे डरकर ही लोग पलायन कर रहे हों। महत्वपूर्ण बात यह है कि 50-60% रोहिंग्या अभी भी रुके हुए हैं। वे अपने यहाँ चरमपंथियों को नहीं आने देते, इसलिए वहाँ आग नहीं लग रही। इन कड़ियों को जोड़ा जाए तो समझा जा सकता है कि पलायन की वजह क्या है। ये थे म्यांमार के समाज कल्याण मंत्री के शब्द। म्यांमार सरकार के मंत्री का कहना है कि उनकी सरकार सही मायनों में लोकतंत्र को स्थापित करने की कोशिश कर रही है, मगर संयुक्त राष्ट्र में रोहिंग्या संकट चर्चा का विषय बना हुआ है। अमरीका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि म्यांमार में रोहिंग्या के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने के लिए तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए। बर्मा के सुरक्षा बलों से अमेरिका फिर से हिंसा रोकने और स्थायी समाधान के लिए कूटनीतिक रास्ता अपनाने की अपील करता है। हम संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा समिति से अपील करते हैं कि इस संकट को दूर करने के लिए कड़ी और त्वरित कार्रवाई की जाए। जरूरत की इस घड़ी में रोहिंग्या लोगों की मदद की जानी चाहिए। अगर हिंसा नहीं रुकती है तो हालात और खराब हो जाएंगे। ये थे अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस के शब्द। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार से निकाले जाने को जातीय नरसंहार करार दिया। उन्होंने कहा कि फ्रांस संयुक्त राष्ट्र समिति के सहयोगियों के साथ मिलकर प्रभावी कदम उठा रहा है, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि इस संकट को हल करने के लिए क्या किया जा रहा है। बर्मा में नफरत भरा जातीय नरसंहार चल रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं और हिंसा रोकने की अपील करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में बात उठती है तो उसके परिणाम भी निकलते हैं। इससे संयुक्त राष्ट्र के दखल की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। फ्रांस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सहयोगियों के साथ मिलकर इस नरसंहार को रोकने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के शब्द। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख जीद राद अल हुसैन ने भी रखाइन राज्य में फैली हिंसा और रोहिंग्या संकट को लेकर म्यांमार के रुख की आलोचना की थी। उन्होंने मांग की थी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति को म्यांमार पर प्रतिबंध लगाने चाहिए। म्यांमार भले ही इस संकट के लिए रोहिंग्या आबादी को ही जिम्मेदार बता रहा हो, मगर अब उसके ऊपर हिंसा रोकने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से म्यांमार पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं।
आदर्श राठौर से आप पूरा विस्तार से ब्यौरा सुन रहे थे। लेकिन पिछले कई हफ्तों से हम लगातार म्यांमार के रखाइन में रोहिंग्या मुसलमानों के पलायन की रिपोर्टें हम आपको सुनवा रहे हैं, लेकिन आम श्रोता बहुत कम इसके बारे में जानते हैं कि रोहिंग्या मुसलमान कौन है, रखाइन कौन सी जगह है और ये सब चल क्या रहा है। मानसी दास मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मानसी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को यही बताइए कि ये रखाइन कौन सी जगह है। ये
म्यांमार के उत्तर पश्चिमी छोर पर बांग्लादेश की सीमा पर बसा एक प्रांत है रखाइन, जहां पर जो जगह जो है ये 36,762 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इस जगह की राजधानी है सितवे। म्यांमार सरकार ने 2014 में जनगणना की थी, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार के रखाइन प्रांत की जो कुल आबादी है वो 21 लाख है, जिसमें 20 लाख बौद्ध हैं और यहाँ करीब 29,000 मुसलमान रहते हैं।
सवाल यहीं पर है कि अगर 29,000 मुसलमानों की तादाद है तो फिर वो लाखों लोग कौन है जो कि बांग्लादेश में शरणार्थी बन के जा रहे हैं?
रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की करीब 10 लाख की आबादी को जनगणना में शामिल ही नहीं किया गया था और इस 10 लाख की आबादी को मूल रूप से इस्लाम धर्म को मानने वाला बताया गया है।
रोहिंग्या कौन है?
जनगणना में शामिल नहीं की गई आबादी को रोहिंग्या मुसलमान माना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये मुख्य रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं। सरकार ने उन्हें नागरिकता देने से इनकार कर दिया है, हालांकि ये लोग पीढ़ियों से म्यांमार में ही रह रहे हैं।
ये हिंसा कब से लगातार जारी है?
रखाइन प्रांत में जो हिंसा शुरू हुई थी वो 2012 से वहां पर सांप्रदायिक हिंसा जारी है। इस हिंसा में बड़ी संख्या में लोगों की जाने गई हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान आज भी जर्जर कैंपों में रह रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को व्यापक पैमाने पर भेदभाव और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। बीते कई सालों से लाखों की संख्या में बिना दस्तावेज वाले रोहिंग्या बांग्लादेश में भी रह रहे हैं।
तो ये तो आपने बताया कि 2012 से सांप्रदायिक हिंसा रखाइन प्रांत में जारी है, तो ये जो ताजा मामला है, ये ताजा हिंसा वहां पर क्यों हुई है?
ताजा हिंसा जो है वो शुरू हुई है इस साल की 25 अगस्त को, जब कथित रोहिंग्या चरमपंथियों ने म्यांमार के उत्तर रखाइन में पुलिस पोस्ट पर हमला कर 12 सुरक्षा कर्मियों को मार दिया था। हमले के बाद सेना ने अपना क्रूर अभियान चलाया और तब से ही म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों का पलायन जारी है। आरोप है कि सेना ने रोहिंग्या मुसलमानों को वहां से खदेड़ने के मकसद से उनके गांव जलाए हैं और नागरिकों पर हमला किए हैं। म्यांमार की सेना ने आम लोगों को निशाना बनाने के आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वो चरमपंथियों से लड़ रही है। पिछले महीने जो हिंसा शुरू हुई थी यानी अगस्त 25 को, उसके चलते अब तक 79,000 रोहिंग्या शरणार्थी सीमा पार करके बांग्लादेश में शरण ले चुके हैं।
तमाम विश्व के नेता अलग अलग अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन ये जो म्यांमार की नेता हैं आंग सान सू ची, ये क्या कहती है?
आंग सान सू ची ने रोहिंग्या मुसलमानों पर होने वाले अत्याचारों को चरमपंथ के खिलाफ कार्रवाई बताया है और उसका बचाव किया है। सू ची ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भी हिस्सा नहीं लिया।
हालांकि उसी दिन उन्होंने अपने देश के वासियों को संबोधित किया था।
जी, उन पर लगातार जो है अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान मानवीय आपदा का सामना कर रहे हैं और उन्होंने रोहिंग्या ग्रामीणों के घरों पर सुरक्षा बलों के कथित हमलों को किसी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। और म्यांमार से उन्होंने अपील की है कि सैन्य कार्रवाई रोक दी जाए।
और जैसा कि आज हमने आपको समाचारों में बताया कि अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस मसले के समाधान के लिए कुछ सख्त कदम उठा सकती है। मानसी, बहुत बहुत शुक्रिया ये विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद ककान अब्बासी का कहना है कि पाकिस्तान ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई की है और आगे भी करेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में विदेश मामलों के थिंक टैंक को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी। उनका कहना था कि पाकिस्तान भारत के साथ रिश्ते सामान्य चाहता है, लेकिन कश्मीर मुद्दा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस नामक थिंक टैंक में बोलते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हाफिज सईद एक प्रतिबंधित संगठन से संबंधित है और पाकिस्तान ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है।
इफ यू टॉक अबाउट हाफिज सईद, ही बिलोंग्स टू अ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट हिम, ही इज इन हाउस अरेस्ट।
हाफिज सईद एक प्रतिबंधित संस्था से संबंधित है, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई भी की है। हाल के एक चुनाव में एक कैंडिडेट ने अपने पोस्टर पर उसकी फोटो लगाई थी, वो गैर कानूनी है और उसके खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और करते रहे हैं। वो अब 3 साल से हिरासत में है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के शब्द। याद रहे कि मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा ने प्रतिबंधित होने के बावजूद अगले साल पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव में भाग लेने का ऐलान किया है। जमात उद दावा ने मिल्ली मुस्लिम लीग नाम से नई पार्टी का गठन भी किया है। भारत से रिश्तों पर एक सवाल के जवाब में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कश्मीर के मुद्दे को सुलझाए जाने पर जोर दिया।
आई थिंक वी नीड टू एंगेज on core issues. Those have to resolve first, and Kashmir is the basic core issue there. But unfortunately, in the recent past, the aggression from India has continued unabated.
हम समझते हैं कि पहले सबसे अहम कश्मीर का मुद्दा सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन हाल में भारत ने आक्रामक रुख अपना रखा है और वो काबिल कबूल नहीं है. लेकिन हम भारत से बराबरी और सम्मान के साथ सामान्य संबंध रखना चाहते हैं. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के शब्द. अमरीका और पाकिस्तान के बीच हाल में रिश्तों में तनाव पैदा हुआ है, जिसके बाद कल न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अमरीकी उपराष्ट्रपति माइक पेन से मुलाकात की थी. अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि पाकिस्तान को आतंकियों की पनाहगाहें बंद करना होंगी. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अमरीका के साथ रिश्तों के बारे में कहा कि पाकिस्तान की कोशिश है कि आतंकवाद के खिलाफ अमरीका के साथ मिलकर लड़े, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका इस सिलसिले में पाकिस्तान को कोई खास आर्थिक मदद नहीं दे रहा.
There is no substantial aid at the present time. And in fact, if you look at the war against terror, we fought it with our own resources.
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका देश अफगानिस्तान में शांति देखना चाहता है, और अमरीका की तरफ इशारा करते हुए उनका कहना था कि अफगानिस्तान में शांति जंग के जरिए नहीं आएगी. कल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे, जहां ये उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का मुद्दा फिर से उठाया जाएगा. सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क.
तो अब देखना यह होगा कि कल जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तो वो क्या कश्मीर का मुद्दा एक बार दोबारा से उठाते हैं या नहीं.
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम.
बीबीसी हिंदी.
भारत. हैदराबाद में पुलिस ने नाबालिग लड़कियों से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के मामले में कम से कम 5 ओमानी और कतर के 3 नागरिकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मुंबई से एक जाने माने काजी को भी इस सिलसिले में गिरफ्तार किया है, जो कि इस तरह की शादियों के लिए कथित तौर पर सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र दिया करते थे. सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट.
हैदराबाद में पकड़े गए ओमानी और खत्री की उम्र 60 साल से 80 साल के बीच है. इनमें से एक जो 80 साल के हैं वो ठीक तरह से देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो 14 और 16 साल की लड़कियों से शादी करने के लिए तैयार थे. हैदराबाद दक्षिण के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वी सत्यनारायणा ने बीबीसी को बताया,
ये माइनर लड़कियों को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए वो ओमान कतर से ज्यादा एज मतलब 70 प्लस एज वाला आके यहाँ एक ब्रोकर को पकड़ के काजी उनको पकड़ के एक तमाशा बना रहे हैं. सर,
कल की गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि पुलिस को अगस्त के एक मामले की जांच करते समय जानकारी मिली. इस मानव तस्करी में करीब 35 ब्रोकर की जानकारी मिली थी, जिसमें से करीब 25 महिला हैं. पुलिस का कहना है कि ये महिलाएं मुस्लिम देशों के एजेंट से संपर्क रखते हैं ताकि स्थानीय महिलाओं और लड़कियां का सौदा कर सकें. फिर यह कड़ी पहुंचती है अरब देशों में उम्रदराज पुरुषों तक. इनके लिए अलग अलग नाम भी रखे जाते हैं. इनमें कम पैसे देने वाले को ऑटो वाला बुलाते हैं, थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करने वाले को एम्बेसडर वाले कहलाते हैं. अगर कोई अमीर हो तो उसको इनोवा वाला बुलाया जाता है. हैदराबाद में मानव तस्करी के लिए काम कर रही एक संस्था की जमीला निशांत बताती हैं,
पहले तो वो लड़कियों को शादी करके ले जाते थे और बाद में उनको छोड़ देते थे वहाँ पर भी, लेकिन अब जो है वो यहीं पर शादी करते हैं और कुछ दिन लड़की के साथ रहते हैं, एंजॉय करते हैं. मैं तो कहूँगी कि ये एक लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन है जो अरब शेख हमारे यहाँ आके करते हैं.
जमीला निशांत एक महिला का व्याख्या बताती हैं, जिसकी 17 बार कॉन्ट्रैक्ट पर शादी कराई गई और उसने 2 साल पहले आत्महत्या कर ली. वो ये भी बताती हैं कि पिछले 3 साल से पुलिस इस तरह के मामलों में थोड़ा ज्यादा दिलचस्पी ले रही है, लेकिन क्या पुलिस कार्रवाई काफी है? हमने यह सवाल टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई के चेयर प्रोफेसर मानव तस्करी डॉक्टर पीएम नायर से पूछा.
सिर्फ हैदराबाद का नहीं है, कई जगह हिंदुस्तान में ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है. इस तरह के जो शादी के नाम पर ट्रैफिकिंग करते हैं, ये एक समस्या है. ये अभी वर्तमान में इसकी जानकारी लोगों को मिलना शुरू हुआ, अदरवाइज तो पहले से भी चल रहा था. उसमें ज्यादा ध्यान नहीं होने के चलते हमको लगता है कि उसमें उसका समस्या का निपटने का रास्ता नहीं हुआ या उसका रोकने का भी कोई साधन अभी तक नहीं हो पाया है.
जो डॉक्टर नायर कह रहे हैं वो मैंने रखता है क्योंकि वो CRPF के पूर्व DGP रह चुके हैं. कल के मामले में हैदराबाद पुलिस ने एक खाजी फरीद अहमद खान को भी मुंबई से गिरफ्तार किया है। वो शादी का सर्टिफिकेट देते हैं जिससे अरब से आने वाले शेखों को, कम उम्र की लड़कियों को देश से बाहर ले जाने की इजाज़त मिलती है और उनकी फीस 1 से 2 लाख रुपए तक बताई जाती है। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
और अब कार्यक्रम में अखबार के पन्ने पलटने का वक्त हो चला है। आदर्श राठौर, आप अखबारों को पढ़ चुके हैं, मांझ चुके हैं, क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ी हेडलाइन क्या है अखबारों की आज?
जी, दो खबरें आज ज्यादातर अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। एक है मेक्सिको में आया भूकंप और दूसरी है वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार आर्थिक रफ्तार तेज करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। इससे थोड़ा हटते हैं तो जनसत्ता में खबर छपी है कि हर चुनाव के लिए VVPAT का मुकम्मल इंतजाम हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार लोकसभा और विधानसभा के प्रत्येक चुनाव में VVPAT युक्त EVM से मतदान सुनिश्चित करने के लिए राज्य के आयोगों को इंतजाम करने के लिए कहा।
हम अपने श्रोताओं को बता दें कि ये जो मशीन है जिसमें कि आप जब बटन दबाएंगे तो एक पर्ची निकलेगी और इसी मशीन का जिक्र हो रहा है कि ये जिसका आप जिक्र कर रहे हैं जी, और ताकि आपको पता चलेगा कि भाई आपने किसको वोट दिया है।
हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर छपी है कि राजस्थान सरकार गायों के लिए ऑनलाइन बाजार शुरू करने जा रही है। अखबार के मुताबिक एक ऐसा पोर्टल बनाने की तैयारी है जिससे लगे कि जिसके जरिए लोग गायों की ऑनलाइन खरीद फरोख्त कर सकें। इस वेबसाइट में गायों की तस्वीरें होंगी, कितना दूध देती हैं इसकी डिटेल होगी, उनकी कीमत होगी और मालिक का पता होगा। इसके साथ ही इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सरकार की रोजगार योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से वांछित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। अखबार कहता है कि अभी तक की जानकारी बताती है कि जुलाई 2017 के पहले हफ्ते तक जिन 30 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी उनमें से 10% से भी कम को प्लेसमेंट के ऑफर मिले हैं। अमर उजाला ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए उस बयान को जगह दी है जिसमें उन्होंने कहा कि बेरोजगारों ने हमें हराया और मोदी को भी हराएंगे। खबर के मुताबिक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में छात्रों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता इसलिए चुने जा रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी के कारण लोग परेशान हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसलिए हारी थी क्योंकि इस समस्या से निपटने के लिए वो जरूरी कदम नहीं उठा पा रही थी। नवभारत टाइम्स की खबर कहती है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को मुहर्रम के बाद कराने के आदेश को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब आप दावा कर रहे हैं कि राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव है तो खुद दो समुदायों के बीच लकीर पैदा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं।
जी, और यहीं पर बता दें कि अगरतला में एक टीवी पत्रकार की हत्या की खबर है जो कि जनसत्ता ने छापी है। बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श राठौर। और अब एक विशेष रिपोर्ट आपको सुनवाने जा रहे हैं। उज्बेकिस्तान में 23 सितंबर से एशियन विमेन क्लब लीग हैंडबॉल चैंपियनशिप खेली जानी है। भारतीय महिला टीम भी इसमें हिस्सा ले रही है। बिहार की हैंडबॉल टीम की कप्तान खुशबू भारतीय टीम का हिस्सा है। नवादा के एक साधारण परिवार की बेटी खुशबू भले ही आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रही है लेकिन एक वक्त था जब उन्हें सिर्फ लड़की होने के चलते कई अड़चनों का सामना करना पड़ा। सुनिए खुशबू की कहानी नवादा से अशोक प्रियदर्शी की इस रिपोर्ट में।
मैं तो पहले बहुत रोती थी सर, कोई दिन ऐसा नहीं होता था जो मैं रोई नहीं गेम को लेकर। अपनी दोस्तों को ग्राउंड जाते देखती थी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, जैसे लगता था बस मैं भाग जाऊं यहाँ से। रोई 2-3 दिन तक तो खाना भी नहीं खाई, फिर आखिर में उन्होंने मान लिया।
ये शब्द है खुशबू के। उन्हें इस बात का दुख था कि 2 साल पहले उन्हें हैंडबॉल खेलने से सिर्फ इसलिए रोक दिया गया था कि वह एक लड़की है। बिहार के नवादा जिले के कसवाई इलाका भदौर की रहने वाली खुशबू ने उसका सामना किया। वे बेहद साधारण परिवार की हैं। आज वह उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित एशियन वुमेन क्लब लीग हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम में शामिल है। खुशबू कहती है,
मैं 1-2 महीने तक मैं घर से नहीं निकली, बिल्कुल भी नहीं। अब वो अगल बगल के लोग, मैं थोड़ा रात में कभी कभी देर से घर आ जाती थी या लड़कों के साथ में प्रैक्टिस करती थी तो कोई देख लेता था, तो फिर घर पे आके बोलता था कि आपकी बेटी मतलब घर पे नहीं रह सकती, वो बाहर लड़कों के साथ घूमती है, प्रैक्टिस करती है, रात में इतने देर से आती है। ये सब सुन सुन के मेरे घर वाले थोड़ा परेशान हो गए और इस वजह से मैं गेम छोड़ने के लिए कहा था उन्होंने।
लेकिन खुशबू ने उम्मीद नहीं छोड़ी, अपने माता पिता से एक मौका मांगा और उस मौके को सफलता में तब्दील कर दी। खुशबू को बिहार पुलिस की नौकरी भी मिल गई। बांग्लादेश और वियतनाम में सफलता पर उनके माता पिता को भी गर्व है। खुशबू की मम्मी कहती हैं,
बचपन से खेल रही थे और बहुत दिन तक खेली, और यहाँ का कोई लड़की नहीं खेलती थी, अकेले खेलती थी। सभी लोग बोलते थे कि आपका बेटी खेलने के लिए जाती है, अकेले ग्राउंड जाती है, शाम को आती है तो अच्छा नहीं लगता है। इसी में हम लोग उसका खेल छोड़ा दिए। अब बहुत दिन उसका खेल छूट गया, घर में बैठ के वो रोती थी, कहती थी कि हमको जाने दो खेलने के लिए, और हम फिर खेल के बढ़िया दिखाएंगे आपको, एक चांस दीजिए कि हम फिर बढ़िया से खेलें और खेल के दिखा देते हैं सभी लोग के। तो फिर इसको उसको हम जाने के लिए दे दिए खेलने के लिए, और गई, और इसके दौरान फिर उसका चिट्ठी आ गया और बिहार पुलिस भी ज्वाइन कर लिए। और आज उसी अथी में देखिए पेपर ऊपर में नाम आता है तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं, और सभी लोग फोन भी करते हैं कि नहीं हमको बहुत अच्छा लग रहा है आपका बेटी खेल रही है।
वैसे यह इत्तेफाक ही था कि खुशबू हैंडबॉल खेलने लगी। 9 साल पहले नवादा में 54वीं नेशनल स्कूल गेम आयोजित हो रहा था। हैंडबॉल का गर्ल्स टीम नहीं थी, तब खुशबू का चयन किया गया था। तब से वह बिहार हैंडबॉल टीम की कप्तान रही है। खुशबू के पापा अनिल कुमार को भी उसकी सफलताओं पर प्रसन्नता हो रही है। वही खुशबू के पिता अनिल कुमार कहते हैं,
खुशबू जो है खेलती थी और बहुत अच्छा कर रही थी, कि खुशबू कभी गलत ढंग से नहीं खेली और अपने तरफ से हर जगह से मेडल लेकर के ही आई। लेकिन अगल बगल के ताना बाना के चलते ही हम लोग उसका खेल बंद करवा दिए थे। बहुत दिन तक खेल बंद रहा, लेकिन वो सब दिन रोते रही, मम्मी को अपना आपा में ली कि मम्मी हम खेलेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन फिर भी नहीं माने। इसलिए कि हम लोग बाजार जाते थे तो लोग गलत नीयत से हम लोग को देखता था और बोलता था कि इनका बेटी जो है सो अकेले रात में जाती है खेलने के लिए, स्टेडियम जाती है, स्टेडियम से आती है, तो हमको और बुरा लगता था। हम लोग छोटा आदमी हैं, सोचे कि कल हो के इस तरह से भावना समाज में फैल जाएगा तो कल हो के उसका शादी ब्याह में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसका खेल बंद करवा लिए थे।
भारतीय हैंडबॉल गर्ल्स टीम के मुख्य कोच शिवाजी सिंधु कहते हैं कि खुशबू बढ़िया खेलती है, आने वाले समय में और बेहतर करेगी। बीबीसी के लिए नवादा से अशोक प्रियदर्शी।
तो ये थी खुशबू की कहानी, और अब कार्यक्रम में खेल की खबरें।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में आज जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में दूसरी बार उतरेगी तो उसकी नज़र सिर्फ जीत दर्ज कर 2-0 की बढ़त हासिल करने पर ही नहीं होगी, बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया से इसी मैदान पर 14 साल पहले मिली हार का हिसाब भी बराबर करना चाहेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया की टीमें ईडन गार्डन पर पिछली बार नवंबर 2003 को भिड़ी थी। उस मैच में मेहमान टीम ने 37 रन से जीत दर्ज की थी। हालांकि चेन्नई वनडे में हार के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को कम आंकना मेजबान टीम की बड़ी भूल हो सकती है। ऑस्ट्रेलियाई टीम जोरदार वापसी करने के लिए जानी जाती है, जिसकी कोशिश वो अपने पसंदीदा मैदान पर जरूर करेगी। ईडन गार्डन्स पर ऑस्ट्रेलिया का 100% जीत का रिकॉर्ड है। वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली इस मैच पर कहते हैं,
मेरा पहला मैच भी देखे हैं, भारत तो 87 पे 5 विकेट गिर चुके थे भारत के, और वहाँ से उन्होंने रिकवरी की, क्योंकि एमएस धोनी अपनी लाइफ के एक बहुत अच्छी फॉर्म में है, हार्दिक पांड्या के जो है जो भी शॉट्स उन्होंने मारी वो लग गई, और मैच रिड्यूस्ड हो गया था, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया को भारी नुकसान हुआ क्योंकि टारगेट बहुत मुश्किल हो गया था।
वहीं बैडमिंटन में वर्ल्ड नंबर 4 भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर सीरीज के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। कोरिया ओपन जीतकर इतिहास रचने वाली सिंधु ने पहले दौर में जापान की वर्ल्ड नंबर 19 मिनात्सु मितानी को 12-21, 21-15, 21-17 से हराया। वर्ल्ड नंबर 12 साइना नेहवाल ने भी दूसरे दौर में जगह बना ली है। उन्होंने वर्ल्ड नंबर 25 थाईलैंड की पोर्नपावी चोंचुवोंग को 21-17, 21-9 से मात दी। साइना का मुकाबला अब रियो ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता कैरोलिना मारिन से होगा। वहीं मेन सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 8 के श्रीकांत ने पहले दौर में वर्ल्ड नंबर 10 तियान हुए के रूप में चीन की बाधा को पार करते हुए अगले दौर में कदम रखा। एचएस प्रणॉय और समीर वर्मा ने भी अपने पहले दौर के मुकाबलों में जीत हासिल की। हालांकि सौरभ वर्मा और बी साई प्रणीत को हार का सामना करना पड़ा। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
खेल समाचारों के बाद अब आपसे विदा लेने का वक्त है, लेकिन उससे पहले हम सुनेंगे मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। पिछले हफ्ते लंदन में ट्यूब ट्रेन में हुए चरमपंथी हमले के सिलसिले में पुलिस ने 17 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी साउथ लंदन से हुई है। इसके साथ ही हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 6 हो गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों से जिस तरह का बर्ताव हो रहा है वो जनसंहार जैसा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से म्यांमार के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। शाम को 7:30 बजे दिनभर कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें और bbchindi.com पर आते रहें। नमस्कार।